તારીખ 24/3/1994 શ્રી નિર્ભ્રાંત દર્શનની કેડી ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 70. મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
दिखाने वाले की प्रतिदारी बिना नहीं रहती. कितना भी घना अंधकार हो, घनिष्ठ अंधकार में एक सेकंड के लिए बिजली हो जाए और मार्ग दिख जाए तो चलने लगेगा, वरना भटकता रहेगा. ये उपाय नहीं होता. ऐसे इस विषय में जो मार्ग को खोजता है और पहचान के किधर का खड़ा होता है, क्या होता है, उसको पहचान अवश्य हो सकती है. यही इसकी योग्यता का एक अंतिम प्रकार है. इसके पहले इस योग्यता में आने के लिए अनेक प्रकार के जो स्टेज है उसका विवरण तो ये प्रकरण में करना हम चाहते हैं. ये तो एक योग्यता का अंतिम प्रकार है जिस जहां से पहचान हो जाती है. लेकिन ऐसी योग्यता में आने वाले को भी आगे कई प्रकार की अपनी पात्रता में आने के लिए कितना सुधार करना पड़ता है, ये भी एक विचारणीय परिस्थिति है, विचारणीय योग्य प्रकरण है. और यह मनुष्यों के लिए यह एकदम प्रयोजनभूत है, क्योंकि दूसरी बात दूसरे लोगों की बात नहीं है, ये हमारे लोगों की बात है कि जिसमें हम हमारे परिणाम के साथ इसका मिलान कर सकें और मिलान करके जो भी हमारी कसूर हो हम उसका सुधार कर सकें. अगर ऐसे परिणाम नहीं होते तो योग्यता की उपाय की योग्यता बिना तो ऐसा दुर्लभ योग मिलने पर भी अयोग रूप ही बन जाता है. एक पद है श्रीमती का इस विषय में कि जिसको परिणाम की विषमता है, यानी अपनी योग्यता में बहुत भी प्रयास है, योग्यता नहीं है, उसको योग अयोग होता है. परिणाम की विषमता तैमे योग अयोग. जो भी सत्पुरुष ज्ञान के साथ को संप्राप्त हुए हैं पूर्व में एक मनुष्यता में रहे हैं, कोई अनादि से ज्ञानी हो व्यक्तिगत रूप से ऐसा तो कभी बन सकता नहीं है. पहले वे भी मनुष्य थे, लेकिन मनुष्यता में यथार्थता में आए थे. क्या हुआ, अगर योग्यता यथार्थ नहीं होती तो आगे बढ़कर के ज्ञान दशा की प्राप्ति नहीं होती. तो यथार्थ मनुष्यता में प्रवर्तन करके वे ज्ञानी होंगे. इस भूमिका में अनुभूति पर्यंत पहुंचे आगे बढ़ करके, इससे जिस प्रकार से वो आगे बढ़े उस प्रकार के प्रवर्तन का, किस प्रकार से आगे बढ़े, कैसे प्रवर्तन करके आगे बढ़े, उस प्रवर्तन का उन्हीं महात्माओं के अनुभवपूर्ण ये सब भाववाही शैली में वर्णन मिलता है। जो भी ज्ञानी हुए वो कैसे ज्ञानी हुए, उनका वर्णन उन्होंने अपनी दशा का किया है, बहुत स्पष्ट किया है। विशद ज्ञान बहुत स्पष्ट किया है, भाववाही शैली में कहा किया है। जिस भाव में वो गुजरे उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत सुंदर आई है। आत्मार्थी जी को ऐसे वचन स्वयं की भूमिका को स्पष्ट करने वाले होने से, प्रयोगभूत होने से, प्रयोगभूत दृष्टिकोण से विचारणीय है। क्या कहा? जानकारी के दृष्टिकोण से जानना नहीं है, प्रयोगभूत दृष्टिकोण से उसको विचार करना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य शास्त्र स्वाध्याय में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शास्त्र स्वाध्याय में अनेक बातें हमारे सामने आती हैं, शास्त्र के माध्यम से, वक्ता के माध्यम से। इन सब बातों में हमको स्पष्ट करने वाली, हमको लागू करने वाली बात कौन सी है जो वर्तमान में हमारे प्रयोग में काम में आती हो, ऐसी बात कौन सी है, उस पर लक्ष्य जाना, ध्यान जाना, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर इस पर ध्यान नहीं जाता है, लक्ष्य नहीं जाता है, तो अपने प्रयोजन की बात छूट जाती है। प्रयोजन भूत बातों में हमें रस आता है और हमारा सत्संग और स्वाध्याय सफल हो पाता नहीं है। ऐसे ही कारण से बहुत लंबे काल पर्यंत स्वाध्याय सत्संग आदि मिलने पर भी ये सफल नहीं हुआ है। इसका यही कारण है कि हमारे प्रयोजन की बात पर हमारा कोई सावधानी नहीं बरती। इस प्रकरण में खास करके धर्मश्री के वचनामृत ग्रंथ के आधार से, यानी इनके वचनामृत के आधार लेकर के प्रस्तुत विषय के अनेक पहलुओं को वर्णन करने का साहस किया है। मनुष्य के भूमिका का यह एक अति सुंदर ग्रंथ है धर्मश्री के वचनामृत। वो महिलाओं में स्वाध्याय करती थी, अपना प्रवचन देती थी, इसलिए हमारे समाज के जो पुरुष विभाग है वो इनके परिचय से अनभिज्ञ रहे हैं, समझाने गए हैं। लेकिन हुआ क्या कि स्वाध्याय के दौरान कई महिलाओं ने इनके प्रवचन के मुख्य मुख्य अंश को वो लिखती रही। उनमें से ये ग्रंथ की संकलना हुई है और इस ग्रंथ का जन्म हुआ है, ऐसे कहें। गुरुदेव ने जब यह ग्रंथ पढ़ा तो उनको बहुत प्रमोद हुआ। इतना प्रमोद हुआ उनको, इतना प्रमोद हुआ कि इस ग्रंथ की लाख कॉपियां नकलें छपवानी चाहिए, ऐसा बोले। हमारे हाँ छब्बीस, ये तो उनकी तो वचन सिद्ध हो ही जाती है, बहुत पुण्यवान पुरुष थे तो इनके तो वचन निकलते ही काम हो जाते थे। इस वक्त कुछ किसी को प्रश्न भी हुआ, कईयों को प्रश्न हुआ कि गुरुदेव को ज्ञान तो समय सारे में सुन रहा था, जब उनको 78 के साल में सन 1978 में समयसार मिला तो सम्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके लिए तो लाख सपा भी तो बोले गए, और इसके लिए आज लाख सपा नहीं तो क्यों बोले, ऐसी एक चर्चा भी छोटे मोटे रूप में चली थी। गुरुदेव यह बात इसलिए कही थी कि मुमुक्षु उनके हित का कारण था। वर्तमान परिस्थिति में जो मुमुक्षु की योग्यता है वो समयसार में से ज्ञान प्राप्ति करिए ऐसी नहीं है, अगर ऐसी होती तो कईयों को ज्ञान प्राप्ति हो गई होती, लेकिन हुई नहीं है ये इस बात का सबूत है। तो वाणीगढ़ मिलकर ध्यान में थे कि समाज के लोगों की योग्यता कैसी बरत रही है। ठीक है, ऐसी योग्यता में कोई प्रयोजनभूत बात, योग्यता में आगे बढ़ करके ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ऐसी कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें खुद बहन श्री के वचनामृत में बहुत आई है। श्री के निर्मल ज्ञान में यह विषय बहुत स्पष्ट था कि वर्तमान समाज में को हमें क्या देना चाहिए, जबकि लोगों को हित का कारण वर्तमान में ही हो गए। इसलिए ऐसी बातें उनके श्रीमुख से बहुत निकली है जो इस ग्रंथ में ग्रंथारूढ़ हुई है। तो इस प्रकरण को देखते हुए, इन बातों का ध्यान, बातों का ध्यान रखते हुए हमने इनके कई वचनामृत का उद्धरण इस जगह किया है। मुमुक्षु जीव के परिणाम में जब स्वरूप प्राप्ति की तीव्रतम भावना होती है, सामान्य भावना नहीं, ऊपर ऊपर वाली भावना भी नहीं, ऊपर ऊपर की भावना से कुछ होने वाला नहीं है। जब भी मुमुक्षु को अपने परिणाम में स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना होती है, साथ ही स्वरूप समझने की अपूर्व जिज्ञासा अर्थात अनंत जन्मों से मुक्त होने की वेदना पूर्वक जिज्ञासा, कैसे वेदना सहित की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए वो बात नहीं है, चलो शिविर में आए हैं हमारे प्रश्न भी हम पूछ लें, चाहे प्रयोजनभूत हो चाहे अप्रयोजनभूत हो, कई बातें तो करणानुयोग की या सूक्ष्म परिणामों की शास्त्र में किए ज्ञान अनुसार विद्यमान है और हम इसमें माथा मारेंगे कि बात कैसे, क्यों ऐसा नहीं, क्यों वैसा। ऐसे इस प्रकार से कि एक प्रयोजनभूत विषय में रस लेने से प्रयोजनभूत विषय समझने का दृष्टिकोण छूट जाएगा, ऐसा नुकसान होता है, ये ध्यान में लेने योग्य है। इसलिए स्वरूप प्राप्ति की या स्वरूप की खोज की जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, कि वेदना आनी चाहिए, इसके लिए हमें वेदना आनी चाहिए। जो भी मुमुक्षु ज्ञानी हुए हैं या होंगे या हो रहे हो उनको पहले यही वेदना आए बिना रहती नहीं। शास्त्र में अनेक प्रकार के परीक्षा के प्रकरण जहां चले हैं वहां अज्ञान परीक्षा और दर्शन परीक्षा नाम का दो परीक्षा की भी चर्चा चली है। ये अज्ञान परीक्षा और दर्शन परीक्षा मनुष्य की भूमिका में उत्पन्न होता है और अपना अज्ञान छूटता नहीं, मिटता नहीं, अपना मिथ्यात्व टलता नहीं। आयु चला जा रहा है, अनिश्चित रूप से कहीं कभी भी खत्म हो सकता है। इसके भान में जो खड़ा है उसको ऐसी वेदना आए बिना रहती नहीं, और नहीं आती है तो उसको स्वरूप प्राप्ति की तीव्रतम भावना नहीं है, ऊपर ऊपर की भावना है। और इस भावना अनंत बार हो चुकी है, इससे काम होने वाला भी नहीं है। वेदना मैंने दुख होना, बेचैनी होना, अकुलाहट होना, अगर ऐसा नहीं होता है तो जीव सन्मार्ग का रास्ता खोजने के लिए उतना अग्रसर नहीं रहता जितना उसको रहना चाहिए। नहीं, बेचैनी ही है वहां तो, बेचैनी में बेचैनी ही है, लेकिन उसका हेतु कोई अलग है। इस बेचैनी का हेतु कोई जगत का पदार्थ नहीं है, इस बेचैनी का हेतु सन्मार्ग से वो खुद वंचित रहा है, अपना अज्ञान मिटता नहीं है, मिटाना चाहता है तो भी मिटता नहीं है, यही कारण है। तो जो चीज चाहिए और नहीं मिले तो क्या होगा, ऐसा होगा ही। इसलिए जिसको भी ज्ञान हुआ है वो इस स्थिति में आई ही है पहले, पूर्व भूमिका का एक प्रकार है जो आए बिना रहता नहीं है। अब देखिए सोगानी जी का जीवन परिचय में वो बात आई है, कितनी छटपटाहट थी उनको मार्ग प्राप्ति के लिए। कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता था, जन्म दिगंबर होने से शास्त्र तो पढ़ डाले थे लेकिन मार्ग नहीं मिला, ऐसे पढ़ने से मार्ग नहीं मिलता। तो जब इतनी योग्यता हो गई, बहुत दर्शन परिसर में आए, उतने अज्ञान परिसर दर्शन परिसर में वो आए थे कि अगर उनके इस विकल्प वाली दशा शांत नहीं होती तो शायद उसका जीना मुश्किल हो जाता। जैसे पानी नहीं मिले तो आदमी मर जाता है, मनुष्य नहीं जी सकता, ऐसे ये ज्ञान प्राप्ति नहीं होती तो प्राण छूट जाता है। ऐसे विघ्नाई थे, ऐसे तीव्र वेदना में वो आए थे, उतनी तीव्र वेदना में आ गए थे कि जब मार्गदर्शक मिले तो 24 घंटों में मार्ग मिला, ज्यादा देर नहीं लगे।
सोनगढ़ की भूमि सफल हुई। सोनगढ़ में अगर किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो यह है पूज्य श्री निहाल चंद्र जी सोगानी। मैंने गुरुदेव का बोध सफल किया, उसने जिस बोध से सम्यक दर्शन होता है इस बोध की सफलता का कोई फल आता है तो कहते हैं कि इन भूमि में कुछ उगला तो सही, निष्फल रही नहीं। और यह प्रसंग एक गुरुदेव की वाणी के सामर्थ्य को भी प्रदर्शित करता है। इस वाणी में कितनी ताकत थी कि एक ही प्रवचन में किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, उतनी ताकत थी इस वाणी में। एक घंटे के प्रवचन में सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा निमित्तत्व इस प्रसंग से जाहिर होता है। तो इस वाणी में सामर्थ्य उतना था, इस वाणी जिस भूमिका में से निकली, इस वाणी का बैकग्राउंड कौन था कि गुरुदेव का साक्षात परिणमन था, मोक्ष मार्ग जो परिणमन था उस परिणमन के आधार से निकली हुई वाणी है। राग के आधार से निकली हुई वाणी नहीं थी, आत्मज्ञान के मोक्ष मार्ग के आधार से निकली हुई वाणी थी कि जिस वाणी को स्पर्श करते हुए किसी सुपात्र जीव को जो चरम सीमा में आ चुके थे, सुपात्रता के चरम सीमा में वो गुजरते थे, उस वक्त वाणी के स्पर्श होते ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। एक गुरुदेव के पुराण लिखे जाएंगे, इनकी एक घटना, विशिष्ट घटना भी लिखी जाएगी, महापुरुषों के चरित्र को पुराण कहते हैं, पुराण पुरुषों के चरित्र जिसको कहते हैं। ऐसे महापुरुषों के जो पुराण लिखे जाते हैं उसमें जो विशिष्ट घटनाएं घटती है उनका विवरण मिलता है। तो ये अनूठी घटना है, ऐसी घटना बार बार सभी के होती नहीं है। यहां पर विषय भी चल रहा है हमारा कि हमारे स्वरूप प्राप्ति की भावना और जिज्ञासा है, यह ऊपर ऊपर की है या इसमें जन्म मरण से छूटने की वेदना भी है, कि रोग मुक्त होने की वेदना होती है कि नहीं होती है। देखिए प्रैक्टिकल साइड से देखिए, पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो इससे मुक्त होने की भी वेदना होती है कि नहीं होती है। कहेगा मरीज, कहेगा मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रोग से मुक्त होने में वेदना होती है और भवरोग से मुक्त होने में वेदना नहीं होती है, ये भी हमारी कोई सामान्य विचित्रता नहीं है, ये भी एक बड़ी विचित्रता है। छोटी विचित्रता है क्या? अल्प प्रसंग में तो हम गड़बड़ कर ले, छोटी मोटी नुकसानी में तो हम लड़ाई कर ले और बड़ी नुकसानी में हम सो जाए, सोते रहे, ये विचित्रता भी है और मूर्खता भी है। इस वेदना होने से क्या होता है? ऐसी वेदना होने से जीव के परिणाम में जो ज्ञान में मलिनता थे वो मलिनता कुछ अंश में दूर हो जाती है। कारण ये है कि दर्शन मोह का अनुभाग वहां टूटता है। दर्शन मोह मंद होता है, दर्शन मोह की शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। मिथ्यात की निविड़ गांठ पड़ी है, अनंत काल से के मिथ्यात के संस्कार से मिथ्यात की ग्रंथि कैसी है, निविड़ है वो, ढीली हो जाती है, शिथिल हो जाती है। जब जीव उसको छुड़ाने के लिए वेदना में आता है तो होता है। परलक्षित शोक संज्ञान में आत्मा ऐसा है, वैसा है, तैसा है, फैसा है, सब समझ लेते हैं, किंतु ये यथार्थ समझ नहीं है। समझ होना, आगम अनुकूल समझ होना एक बात है और यह समझ यथार्थ होना ये दूसरी बात है। यथार्थता का प्रकरण प्रारंभ में थोड़ा बहुत लिया था, तो यथार्थता में बहुत बात भरी है। इसलिए ऐसा अवकाश इस वेदना वाली भूमिका में होता है कि जिसमें समझ की यथार्थता आती है। आगम ज्ञान भले ही अल्प हो, ये आगम भले ही पढ़ाई नहीं हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारे स्वरूप प्राप्ति की तीव्रतम भावना होनी आवश्यक है। ये सबसे अधिक आवश्यक है। अंतरंग में उत्पन्न ऐसी जिज्ञासा का यह विशिष्ट प्रकार है जो जीव को सम्यक दर्शन के समीप ले जाता है। ऐसी स्थिति में जीव को सर्वप्रथम पूर्ण निर्दोषता की प्राप्ति अर्थात पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति अर्थात पूर्णता की प्राप्ति करने का ध्येय बनना चाहिए। ऐसा ध्येय बनाने वाला ही इस पगडंडी पर प्रथम चरण रखता है, वहां तक शुरुआत होती ही नहीं है। और इस ध्येय बनने में एक कौन पहुंचता है कि जो मोक्षार्थी होता है वह पहुंचता है। इसलिए ये मोक्षार्थी का प्रकरण है तो यहां शुरू में लिखा है। प्रारंभ में संसारी जीव की जो दशा है सामान्य रूप से इसका एक चित्र खींचा है कि पौराणिक काल की मनुष्य आयु के प्रमाण में वर्तमान काल में मनुष्य आयु अल्प है। चतुर्थ काल में जो मनुष्य आयु था
उतना पंचम काल में मनुष्य आयु नहीं है। चतुर्थ काल में भी प्रारंभ में जो मनुष्य आयु था वो अंत में नहीं रहा। ऋषभदेव भगवान का आयु 84 लाख पूर्व था, जबकि महावीर भगवान का आयु सिर्फ 72 साल का था। कितना बड़ा अंतर हो गया। इसलिए हमारे पास हमारा आत्म कार्य करने के लिए समय बहुत अल्प है। यह कहने का तात्पर्य है कि आयु अल्प है और यह आयु अल्प होने पर भी वह भी अनित्यता से ग्रसित है। उसका कोई ठिकाना नहीं है किसका आयु कब पूरा होगा। किसी का तो माँ के पेट में गर्भ में आते ही आयु पूरा हो जाता है, बच्चा हवाएं गुड़ जा मर जाता है। तो कोई जन्मते ही मरता है, कोई किसी दिन में, कोई किसी माह में, कोई किसी साल में, जिसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। अल्पता और अनित्यता, अनिश्चितता, ये दोनों ऐसी स्थिति में भी दुर्भाग्य मनुष्यों को तो सांसारिक जीवन निर्वाह की अनेक प्रकार की प्रवृत्ति में ही आयु का अधिक भाग व्यतीत करना पड़ता है। व्यतीत करना पड़ता है उनको, जबरन नहीं चाहे तो भी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, अपना जो आयु का बहुमान है वो उसमें उसको गंवाना पड़ता है। ऐसी एक परिस्थिति में आज का मनुष्य खड़ा है। किसी किसी का पूर्वपुण्य के वजह से अल्प प्रवृत्ति से ही निर्वाह हो जाता है। पुण्य लोग होता है तो बहुत प्रवृत्ति में नहीं पड़े, अल्प प्रवृत्ति करे तो भी आमदनी हो जाती है और उसका जीवन निर्वाह चला जाता है। लेकिन 100 आदमी में से, 100 मनुष्य में से सिर्फ 5 मनुष्य का ऐसा प्रकार होता है। 95 को तो अपना जीवन निर्वाह के लिए बहुत समय देना पड़ता है। फिर भी ऐसे कोई श्रीमंत होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जिसको कमाने की बहुत जरूरत नहीं है, तो उनकी दूसरी आपत्ति वो होती है कि सत्संग उसको ज्यादा मिलता है। बहुत पैसे वाले को ज्यादा खुशामत खोर मिलते हैं, खुशामतियां मिल जाते हैं, या इसके 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनकी विविधता में भोग उपभोग में ही इसका समय निकल जाता है आयु का। 5 इंद्रियों के विषयों की विविधता पूर्ण विशाल विस्तार में जीव घिरा हुआ रहता है, वहां से उसका परिणाम बाहर निकलता नहीं है। ऐसी स्थिति प्राय देखने में आ रही है। उसके उपरांत वर्तमान मनुष्य की स्थिति यह है, योग्यता यही है, ये तो बाहर की बात हुई। अंतर की योग्यता ऐसी है कि उसने पूर्व में भूतकाल में सन्मार्ग की आराधना नहीं की है, यानी सन्मार्ग के संस्कार नहीं है इनके पास। यह भी एक विटमना है कि इसकी योग्यता में हीनता है। आत्महित संबंधी किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ उत्पन्न न कर सके, इस प्रकार की योग्यता वर्तमान में उसके पास, योग्यता का भी साधन नहीं है, पूर्व में सन्मार्ग का आराधन नहीं किया है, फलस्वरूप ऐसी योग्यता है कि जिस कारण से वर्तमान में उसको पुरुषार्थ करने में कठिनाई आ रही है, यानी पुरुषार्थ इसका न चले, ऐसी हीनता को प्राप्त हुआ है। जीव को ऐसा ही प्रकार सामान्य रूप से मनुष्य का है। संक्षेप में ये दोनों बात का संक्षेप यह है कि इस वर्तमान काल में पूर्व में कभी नहीं जाना हुआ सन्मार्ग, नहीं प्रतीत किया हुआ सन्मार्ग, नहीं आराधित किया हुआ सन्मार्ग जीव को प्राप्त होना दुष्कर हो रहा है। यही स्थिति वर्तमान में है कि सन्मार्ग की प्राप्ति गति दुष्कर हो रही है और इस परिस्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। फिर भी ऐसा होने पर भी निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसी एक बात करनी है यहाँ पर। ऐसा होने पर भी यदि किसी मनुष्य जीव को मार्ग प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य हो तो अवश्य मार्ग प्राप्ति संभवित है। क्या एक लक्ष्य, एक निष्ठा होनी चाहिए कि मेरे इस मनुष्य आयु में मुझे अपना आत्मकार्य जैसे कैसे भी कर लेना ही है। ज्यादा कठिनाई तो उन लोगों को है कि जो अपने अनुकूलता के अनुसार मार्ग में पहुंचना चाहता है, उनको जैसे कि समाज में कोई तकलीफ न पड़े उस प्रकार से हम इस लाइन में रहे कि जिससे कोई हमारे समाज की हमें तकलीफ नहीं पड़े, समाज की ओर से तकलीफ पड़ने का कोई कारण बनता है तो सन्मार्ग को गौण कर देता है या हट जाता है। क्या करें, हमको समाज के बीच में रहना है, इसलिए अगर सत्य को भी हम स्वीकार करेंगे ऐसी बात समाज में जाहिर हो जाएगी तो हमने हमको सामाजिक तकलीफें पैदा हो जाएगी। किसी को कुटुंब की तकलीफ है, कुटुंबियों को राजी रह करके धर्म करना है, अगर कोई नाराज होता है तो सन्मार्ग को गौण कर देता है। किसी को शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता की शर्त है, अगर मुझे साता रही, अगर मुझे अनुकूलता रही, अगर मेरा मान सम्मान बराबर जारी रहा तो मैं इस धार्मिक क्षेत्र में अपना कार्य बराबर कर सकूंगा। ऐसे कहीं न कहीं अपनी कल्पना के अनुकूल परिस्थिति को रख करके या सोच करके जो धर्म करना चाहता है उसे सन्मार्ग की प्राप्ति कभी होती नहीं है। सन्मार्ग की प्राप्ति वह जीव कर सकता है जिसको किसी भी कीमत पे एक बार प्राप्ति करनी ही हो, वही कर सकता है, उसमें अपनी शर्त काम में नहीं आती। ऐसा क्यों? बाहर में प्राइम मिनिस्टर को या राष्ट्रपति को मिलना हो तो कोई हमारी तरफ से मिल सकते हैं? तो हमको मिलने में ये कंडीशन है, हमारी शर्त बराबर हो तो हम मिले वरना हम नहीं मिलेंगे, ऐसा चलता है क्या? तो ये तो परमात्मा को हमको मिलना है, तीन लोक का नाथ है उसका दर्शन करना है, उसमें हमारी शर्त कोई काम में नहीं आ सकती। इसलिए जिसको मार्ग प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य होता है तो अवश्य मार्ग प्राप्ति संभवित है, उनके लिए मार्ग सरल है, उनके लिए मार्ग सुगम है और कहीं भी वो सर्वत्र इसकी प्राप्ति हो सकती है। अतः समीप दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग को पाने वाले जीव की मुमुक्षुता यथार्थ रूप में किस प्रकार की हो यह विषय का यहां विस्तृत रूप से प्रतिपादन करना है कि मुमुक्षुता की पात्रता का विषय है, यानी मोक्षार्थी का स्वरूप कैसा है, ये विषय यहाँ पर लिया है इस प्रकरण में। सर्वप्रथम मुमुक्षु जीव को मार्ग प्राप्ति के मार्ग में दो प्रबल निमित्त दो प्रकार के हैं, एक तो है प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग, वर्तमान में मार्ग प्राप्ति का कोई प्रबल निमित्त हो तो ज्ञानी पुरुष का योग होना यही है। कोई भी जीव तीनों काल में ज्ञानी पुरुष के योग बिना कोई मार्ग प्राप्ति होती है या हो सकती है वो वस्तु स्थिति में नहीं है, वस्तु की मर्यादा में वो बात नहीं है, अनादि अनंत ये वस्तु की मर्यादा है, अनंत काल से अनजाना हुआ मार्ग, जो मार्ग जानने वाला पथ प्रदर्शक मिलता है उसे ही जाना जाता है, स्वयं अपने आप से कोई जान सकता नहीं है, ये स्थिति है। श्रीमद् जी ने इस विषय पर एक पद लिखा है, पावे नहीं गुरु गम बिना यही अनादि स्थित। गुरु गम बिना कोई पा सकता है इस मार्ग को, ऐसा कभी बन सकता नहीं है। जो पद लिखा है ना, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, बिना नयन की बात है, ये ज्ञान नेत्र की बात है, वो ज्ञान नेत्र देने वाले ज्ञानी होते हैं, इसके सिवा मार्ग प्राप्ति किसी प्रकार से संभवित नहीं है। और दूसरा निमित्त है सत्शास्त्र का स्वाध्याय। दो प्रकार के निमित्त है ज्ञान प्राप्ति के लिए, सन्मार्ग की प्राप्ति के लिए। उक्त दोनों प्रकार के निमित्त का योग हो, दोनों प्रकार के निमित्त का योग हो तो वह एक महान पुण्य का योग है, ऐसा समझना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी दोनों में भी प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग ही विशेष बलवान कारण है जिससे इस प्रकरण को संपूर्ण लक्ष्य से विचारना वांछनीय है। इस प्रकरण में इस बात की महत्व हमें नहीं समझ में आई, कोई मार्ग प्राप्ति हो सके, ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। अनंत काल में इस विषय में क्या हुआ है कि अनंत काल में ज्ञानी पुरुष का समागम क्वचित हुआ है तो भी अनंत बार हुआ है, और इस प्रकार का विशिष्ट प्रकार का पुण्य योग होता है तब ही होता है ऐसा योग। दूसरे प्रकार के पापानुबंधित पुण्य का योग में जीव को श्रीमंताई मिलती है, राजा या सत्ता का पद मिलता है, कोई भी राष्ट्रपति या राजा का या देवलोक का देव भी बन जाता है, किंतु ऐसा पुण्य मोक्ष मार्ग में काम में नहीं आता, ये पुण्य संसार मार्ग में आगे बढ़ने वाला है, बढ़ाने वाला है। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष का योग है, एक सत्पुण्य है, मैंने अगर पुण्य तत्व कोई ठीक है तो यहां पर है। अगर पुण्य तत्व के विषय में भी अगर कुछ ठीक बात समझी जाए तो ये सत्पुरुष का योग वाला जो पुण्य है वो सबसे विशिष्ट प्रकार का अधिक पुण्यवान प्रसंग है, जिसमें मोक्ष मार्ग पाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और कई जगह ये अवसर नहीं मिलता है। हाँ, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का योग है। ऐसा पुण्य अगर होता है तो बड़भागी जीव है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसे उदय काल में क्या ऐसे सत्पुरुष का योग मुझे मिले, ऐसे उदय काल में यदि किसी आत्मार्थ जीव की योग्यता उस सत्पुरुष को पहचानने के सुयोग्य हो, ऐसी योग्यता हो कि वो पहचान सके, इसका अर्थ क्या है कि ऐसा समागम होने पर पहचान न कर सके, ऐसे बाधित परिणाम उसे न वर्तता हो, क्या अस्तु में से एक नास्तिक निकाली है। सत्पुरुष के पहचान की योग्यता हो, इसका मतलब क्या है कि उसको न पहचान सके, ऐसे परिणाम उनके वर्तमान में न हो, तो उस जीव की आत्मकल्याण की अभिलाषा सफल हो सकती है। इस विषय में श्रीमद् जी ने बहुत प्रकाश पारा डाला है। वो तो वहां तक कहते हैं कि अगर एक बार भी सत्पुरुष की पहचान हो गई तो यह जीव निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है। वो बात को उन्होंने वहां तक ली है अपने अनुभव से। इसका अर्थघटन यह भी हम कर सकते हैं कि अनंत बार में अनंत ज्ञानी मिले हैं, लेकिन एक बार भी हमें उसकी पहचान नहीं हुई है। नहीं हुई इसका क्या कारण है कि इस परिणाम में जीव वर्ता कि जिसके पहचान न, जिसे पहचान न हो, ऐसे पहचान करने में बाधक परिणाम होते हैं। ये परिणाम जहां तक बाधक परिणाम चालू रहते हैं, विद्यमान होते हैं, वहां तक पहचान नहीं है होती है। ये बाधक परिणाम तीन प्रकार के हैं, ये विषय यहां
लिखने में हम चुप गए हैं, लेकिन ये प्रश्न यहाँ अवश्य अवश्य उपस्थित हो सकता है कि ऐसे जीव के कौन से कल्याण हैं जिसके कारण सत्पुरुष प्रत्यक्ष मिलने पर उनको पहचान नहीं होती है। संन्यासन मानना एक बात है, पहचान होनी दूसरी बात है। जैसे हम कहेंगे कि हजारों लोग सुनकर आते थे गुरुदेव को, ज्ञानी के रूप में विनय करते थे, सम्मान करते थे, प्रवचन सुनते थे, प्रशंसा करते थे और समर्पण भी करते थे। बहुत समर्पण भी करने वाले थे, फिर भी इस कारण से कोई पहचान हो गई हो ऐसे बात नहीं है, अक्सर नहीं है। सोने के अलंकार होते हैं, उनको सब सोना ही सोना आम जनता भी स्वीकार करती है कि सोने के अलंकार है, लेकिन कसौटी पे कस लगा करके सोने को परखने वाले सोने ही होते हैं। सोने के अलावा आम जनता इसकी परख कर सकते नहीं है। आम जनता उसकी खरीद कर सकते हैं क्या? अगर अपने पास पैसे होते हैं तो सोने के अलंकार की खरीदी कर सकते हैं जोड़ी बाजार में से? इसका मतलब वो नहीं कि हम सोने की परख जानते हैं, इसलिए ज्ञानी के प्रति समर्पण किया तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि ज्ञानी की पहचान हो गई है। पहचान अलग चीज है और सबके साथ में खड़ा रहना, हम भी मानते हैं श्री राम जी, ये बात अलग है। पहचान करना बात अलग है, मान लेना ऐसे ही मान लेना बात अलग है। किसी ज्ञानी के बहुत पुण्य दिल होते हैं, बहुत उनको ज्ञानी मानते हैं, इसलिए सब मानने दूसरे भी मानने लगते हैं, अनेक लोग मानने लग जाते हैं, इसलिए कोई पहचान हो गई सो बात नहीं है। ये पहचान नहीं होती है। इनके तीन प्रकार के जो परिणाम हैं, इसका वर्णन श्रीमद जी ने अपने पत्र अंक 416 में लिखा है। 416 में उन्होंने तीन प्रकार ऐसे बताए हैं कि ज्ञानी मिलने पर भी और इनकी ज्ञान वार्ता सुनने पर भी, सुनते वक्त हमको भी इस बात का पता है, हम भी समझते हैं, ऐसा तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले जीव को अभिप्राय रहता है तो ज्ञानी के वचनों को ये अपने मत अनुसार तुलना कर लेता है। ये गुरु शास्त्र पढ़ने में भी होती है कि शास्त्रकार का अभिप्राय तो कुछ और हो और हमारी समझ कुछ और हो। हमारी जिज्ञासा शास्त्रकार के या ज्ञानी के अभिप्राय को समझने के लिए आतुर न हो और हमारा अभिप्राय अनुसार हम उसका अर्थघटन कर ले तो ये भूल हो जाती है। हमारी मति तुलना कर लेती है बिना समझे और उनको लगता है कि हमको भी इतने इतनी समझ तो है, हम भी समझते हैं, नहीं समझते ऐसी बात नहीं है। हम भी बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं इस विषय में, और हमारी समझ इसमें बराबर है, इसलिए मैं समझता हूं ऐसा एक भाव ज्ञानी की पहचान करने में बाधक हो जाता है। दूसरा परिणाम वो है कि ज्ञानी के प्रति जो भी बहुमान से समर्पण भाव आना चाहिए, इससे ज्यादा अधिक प्रेम अनुराग हमारे आरंभ परिग्रह और कुटुंब परिवार आदि के प्रति होता है, तो भी ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। ये बात रही समर्पण के विषय की। जितना प्रेम हमारे कुटुंब परिवार और परिग्रह पति प्रति है, इससे अधिक प्रेम हमको ज्ञानी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हमारे परम कल्याण के निमित्त है। जबकि संसार के निमित्त तो दुर्गति के ही निमित्त है, सदगति के भी निमित्त नहीं है। ये तो सत्संग भी नहीं है, घर में तो सत्संग भी नहीं है, ऐ सत्संग है। क्या है? ऐ सत्संग है। ऐसे परिणाम होते हैं, वहां तक भी ज्ञानी की पहचान नहीं आएगी। तीसरे प्रकार के परिणाम यह है कि हम ज्ञानी के पास जाएंगे तो हमारी समाज में अपकीर्ति होगी, अपमान भय से भी नहीं जाएंगे, वहां हमारा कुछ अपमान हो जाएगा तो हमारा मान सम्मान जो हमारा दर्जा है उसी के अनुसार वहां नहीं मिलता है, तो ऐसे अपमान भय, अपकीर्ति भय, मान सम्मान का भाव रहना ज्ञानी के समागम में आने पर भी उसकी पहचान होने में बाधक कारण बनते हैं। ऐसे तीन प्रकार के परिणाम हैं, वो कभी न कभी चालू रहे हैं। ज्ञानी मिले, जब जब मिले तब चालू रहे हैं और पहचान होने में ये बाधक कारण बने हैं।